हिंदी साहित्य में यूं तो आत्मकथाएं बहुत लिखी गई हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने अपना खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट कागज पर उतारने की कोशिश की है। एक बानगी देखिए।
मेरे गालों की हड्डियां उभरी हैं, जो विद्रोही व्यक्तित्व की सूचक है। नाक नुकीली है, देखकर कोई भी समझदार ये मान जाएगा कि नाक वाला है। होंठ न पतले न मोटे, मुंह छोटा, निचले होंठ पर एक तिल भी है। अनुभवी लोगों से सुना है कि ऐसे तिल वाले को रसीले भोजन, पानों और रसीले होंठों का सुख मिलता है। सब मिलाकर चेहरा बुरा नहीं है, लोगों का ध्यान एक बार तो अपनी ओर खींच लेता है। कुछ औरतें भी इस पर रीत चुकी हैं। तसल्ली है, सबसे बड़ी तसल्ली इस बात की है कि मेरे चेहरे पर इश्क फरमाते रहने का धंधा या लफंगापन अपना साइन बोर्ड कभी नहीं टांग पाया। देखते ही किसी को विश्वास हो जाएगा कि आदमी भला और शरीफ है।
ये हैं अमृतलाल नाकर, अपना खुद का पोर्ट्रेट खींचते हुए टुकड़े टुकड़े दास्तान में। उनके मुंह बोले शिष्य मनोहर श्याम जोशी ने अपनी किताब लखनऊ मेरा लखनऊ में लिखा था कि नागर जी की जिस चीज से मैं चकित चमत्कृत रह जाता था वो थी उनकी जिंदा दिली। हमने बात की मशहूर फिल्म कथाकार और अमृतलाल नागर की बेटी अछला नागर से।
वो बहुत खूबसूरत थे, काफी लोग उनको मुस्लिम समझते थे क्योंकि उनकी जबान बहुत अच्छी थी। शुरुआती दिनों में वो अछन भी पहन लेते थे कई बार, और बाद में तो वो सफेद कपड़ों पर आ गए थे। बिकॉज अपने बारे में उन्होंने एक शब्द जितने लिखा है, मैं बीच की मांग निकालता हूँ और मेरी आंखों की पुतलियों का रंग हल्का भूरा सुनहरा है, मेरी नाक सुतवा है, मुस्कुराहट बड़ी खुशनुमा है। और जब उन्हें क्रोध आता था तो क्रोध ऐसे आता था इतनी जोर का, लेकिन वो बाहर वालों पर नहीं आता था। किसी बात से उनकी क्रिएटिविटी अगर अटक जाती थी या कोई और उसका गलत उसूलन से गलत बात कर रहा होता था जो उन्हें बुरी लगती थी, या लेट हो रहा है जैसे घड़ी के पाबंद थे, घड़ी पर नजर देती थी, बहुत सी बातें मन। तो अगर क्रोध आता है, वो खुद कहते थे मुझे क्रोध ऐसा आता है कोई भी विकराल रूप ले सकता है, लेकिन वो ऐसे ही से बादल आए घर से बरस के खत्म।
अमृतलाल नागर पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था मुंशी प्रेमचंद और शरदचंद चट्टोपाध्याय का। वो उनके दर्शन करने खास तौर से कोलकाता जाते थे। नागर जी के निकट सहयोगी रहे और उनकी कहानियों पर शोध कर चुके प्रोफेसर एसपी दीक्षित बताते हैं।
अपने लेखन के उन्होंने तीन महत्वपूर्ण सूत्र बनाए हैं। एक तो ये है, जो सलाह उन्हें प्रेमचंद से मिली थी कि जो लिखो रियलिस्टिक लिखो। दूसरी बात उन्होंने शरदचंद से सीखी थी, जब उनसे इंटरव्यू हुआ था उन्होंने कहा कि पहले फील करो उसके बाद लिखो, गहरे एहसास के आधार पर लिखना चाहिए। और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात उनके बाबा राम जी ने कही थी कि अपनी कलम से किसी की निंदा नहीं करना। इन तीनों चीजों का निर्वाह वे आजीवन अपने पूरे लेखन में करते रहे। हालांकि सब जानते हैं कि वे फ्रीलांसर थे, कलमजीवी, और आज के इस युग में पूरे परिवार के साथ कलम के सहारे जीविका चला पाना बहुत कठिन होता है। कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं, बाजार से कुछ रोचक चटपटा मसाला देना पड़ता है जो विचारधारा से भिन्न होता है या स्तरीय लेखन से भिन्न होता है, पर यहाँ भी नागर जी एक विशेष प्रकार का संयम और संतुलन बनाए रहे।
लखनऊ के जनजीवन और बोली का जितना शानदार चित्रण अमृतलाल नागर की रचनाओं में मिलता है उतना शायद कहीं नहीं।
उन्होंने लखनऊ के जनजीवन को ओढ़ा बिछाया, इसको पूरी तरह से जिया, इसके पूरे इतिहास को समझा, पूरी सामाजिक संरचना को समझा और हर वर्ग से निकट संपर्क स्थापित करके तब फिर उसे लेखन में परिणत किया। जैसे बूंद और समुद्र के बारे में लोग कहते हैं कि उसमें चौक की गलियां बोलती हैं, जैसे घरों से वही आवाज आती है, वही संवाद, उसी प्रकार के पात्र। लेकिन एक विशेषता ये देखिए कि किसी भी पात्र को हूबहू जैसा देखा जाता है वैसा चित्रित न करके, ताकि वैयक्तिक न हो, उन्होंने उसी से मिलते जुलते कई पात्रों का एक कॉकटेल बनाया और उन सबको मिला करके एक नए व्यक्तित्व का गठन किया। लखनऊ की भाषा को उन्होंने पूरी तरह से अपनी घुट्टी में पी लिया था, वही बोलीबानी, वही लहजे, वही मुहावरे और वही शब्दावली। एक खास तरह की भाषा उन्होंने बनाई थी जिसको मैं मजाक मजाक में नागरी भाषा कहा करता था, जैसे नागरी देवलिपि है, देवनागरी, इसी प्रकार की एक भाषा उन्होंने गढ़ी थी और वो भाषा गली मोहल्लों से इकट्ठी की थी। तो ऐसे बहुत सारे पात्र उन्होंने यहाँ के चुने, कोई तांगे वाला है, कोई चाट बनाने वाला है, कोई कादिर मियाँ है, कोई सकीला की माँ है।
तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है, ऐ शहरे लखनऊ।
अमृतलाल नागर एक ऐसे लेखक थे जो किसी संकीर्ण मतवाद से प्रतिबद्ध नहीं थे। वो प्रगतिशील साहित्यकारों के बीच भी उतनी सहजता से बैठते थे जितना उनके विरोधियों के बीच। उनके मानवतावाद का उदाहरण देते हुए उनकी बेटी अश्ला नागर कहती हैं।
कहते थे बेटा हमारे यहाँ पूजा होती है, पाठ होती है, सब ठीक है, होता रहेगा, अच्छी बात, जैसा हो वैसा देखो करना, लेकिन बेटा हमारा कोई पूछे क्या धर्म है हमारा, कहना मानवता। एक बार स्कूल के फॉर्म में मेरा मानवता ही कॉलम लिखा उन्होंने। वो ये कहते थे कि किसी को वो करो जैसे नमस्कार या कुछ, तो जय हिंद बोलो। जय हिंद से जाति बोध नहीं होता, धर्म बोध नहीं होता। एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कुमुद भाई के पत्र में लिखी कि बेटा तुम्हारी नानी तुम्हारा यज्ञोपवीत करवाना चाहती, और वो भी ठीक है, वो पूरा आयोजन होता है, विधि विधान से होता है, उसमें एक धागे का एक समूह होता है जो पहनाया जाता है मंत्रों के साथ। मैं एक बात और कहता हूँ, एक ऐसा भी जनयु हो सकता है जिसमें कुरान बाइबिल और गीता के तीन धागों को गांठ बांध के और वो गले में पहना दिया जाए, तो मेरी समझ में वो भी एक बहुत सुंदर जनयु है। आप ये बताइए कि जब ऐसी बातें बच्चों को पत्रों से जिन बच्चों को सिखाई गई है वो कैसे बच्चे हो सकते हैं।
अमृतलाल नागर 1940 में मुंबई गए थे जहां वो 7 साल रहे। इस बीच उन्होंने 18 फिल्मों की पटकथाएं लिखी। डबिंग का काम करने वाले वो पहले लेखक थे। वहां उन्हें कई बड़े लोगों के सानिध्य का मौका मिला। उन दिनों मशहूर कवि सुमित्रानंदन पंत भी मुंबई में पंडित नरेंद्र शर्मा के साथ रहा करते थे।
शिवाजी पार्क के उस कमरे, तो मुझे बड़ी याद है उस कमरे की, वहाँ वही रहते थे हम। इतने बड़े बड़े सितारे उस कमरे में बैठे हैं, भारत रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे शर्मिला टैगोर के दादाजी अवनींद्रनाथ टैगोर, बहुत बड़े चित्रकार थे वो। शर्मिला मुझसे कुछ 2.5 साल छोटी होगी मेरे ख्याल से, छोटी सी थी तब, हमारे घर के पास ही रहती थी। अवनींद्रनाथ जी तो उसका हाथ पकड़ के एक केन का कैप लगाती थी, छोटी सी बच्ची, याद है वो चित्र मुझे। कवि प्रदीप जी, ये सारी हस्तियां, पंडित नरेंद्र शर्मा मेरे चाचा और अनिल विश्वास इतने बड़े संगीतकार, दिलीप कुमार, तो इनके पिता की बहुत बड़ी ड्राई फ्रूट्स की दुकानें थी। इनके संपर्क में पहले भगवती चरण वर्मा चाचा जी के संपर्क में आए, फिर बाबू जी के संपर्क में आए। जब मुझे पहली बार मुझे दिलीप साहेब और उन्हें पता लगा मैं नागर जी की बेटी हूँ, तो बड़ी प्यारी स्माइल, बाबू जी के बाद मुझे दिलीप साहब की स्माइल बहुत मेरे दिल में उतरी हुई है। और जबान उनकी, मुस्कुराते हुए बोले अरे भाई आप उनकी बिटिया हैं, हम तो उनके हुक्का बरदार थे नागर जी के। वो आए थे, सबको कोल्ड ड्रिंक्स बांट रहे थे। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे पिता की पुत्री हूँ, उन्होंने तो कि उससे भी उनके बड़े जो लोग थे उनका सानिध्य भी मुझ पे, गोद में खेलने का अवसर मिला, उनका लाड़ प्यार मिला।
मुंबई से वापस आ जाने के बाद भी अमृतलाल नागर का संबंध फिल्मों से छूटा नहीं। लखनऊ के उनके घर में शतरंज के खिलाड़ी और जुनून जैसी फिल्मों की शूटिंग हुई थी। उनकी पौत्री दीक्षा नागर बताती हैं।
जुनून की शूटिंग हमारे घर में करीब जो है 12-14 दिन चली थी, और जिस हिस्से में हम रहते थे वो जो है एक तरह से मेस था, और बाकी जो दरवाजा बीच का खोलो तो जो मर्दाना हिस्सा था वहाँ पर बहुत से दृश्य मैनेगल साहब ने शूट किए। ये वो घर था जिसमें जेनिफर कपूर और नफीसा अली में उन्होंने पनाह ली थी। में इसमें चुकताई की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। जब ये शूटिंग शुरू हुई तो जिस दिन ये शुरू हुई है उस दिन मैं स्कूल में थी, और नागर जी के जो सहयोगी हैं चकलस के जमाने से संचित बाबा जिन्हें हम कहते थे, वो हमको स्कूल से लेने आए, बोले कि जो है शूटिंग हो रही है, शूटिंग हो रही है। और जब हम घर में घुसे तो हमको जो चौकीदार रखा गया था शूटिंग वालों ने, वो हमको घर के अंदर नहीं घुसने दे रहा था। वो कहता कि आप पास लाइए तब हम आपको अंदर जाने देंगे। तो उसको समझाने में बड़ी दिक्कत हुई। और जब मैं घर में पहुंची हूँ तो मैंने नजारा ही बिल्कुल देखा कि जो है इतनी भीड़, पुराना मकान था, लकड़ी के जीने थे।
एक तरह से वो उपन्यासों के माध्यम से हमारे कई 100 सालों का सामाजिक इतिहास लिख रहे थे।
मैंने पाया कि वे होमवर्क बहुत करते थे। किसी भी ऐतिहासिक कथा को लिखने के पूर्व 50 पुस्तकें पढ़ते थे, उनको एक तरफ से रंग डालते थे, उसे नोट्स बनाते थे, और इससे बड़ी विशेषता ये है कि जहां जिस घटना को लिख रहे होते थे वही जाकर वे बस जाते थे। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि जब वे खंजन नयन लिख रहे थे तो लगभग 2.5-3 महीने मथुरा में, वृंदावन में, पारसौली में, सुरकुटी में वे किराए का कमरा लेकर के रहे। एक बार की घटना, मैंने पूछा बाबूजी इन दिनों क्या चल रहा है, तो ब्रज से लौट करके ही आए थे, बोले डॉक्टर वो अंधा उंगली नहीं पकड़ने दे रहा है। नहीं समझ पाया कि उंगली पकड़ने का क्या मतलब है। उनका तात्पर्य था कि जब तक पात्र भीतर स्पंदित ना हो, वो खुद न बोले, तब तक वो चरित्र जीवित नहीं होता है। तो उससे सीधा साक्षात्कार करना केवल ऐतिहासिक या केवल अतीत की घटना के आधार पर नहीं, वर्तमान में उसको ले आना, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी।
1960 में उन्होंने यौन कर्मियों पर एक रिपोर्टाज लिखा, ये कोठेवालियां। उन्होंने सैकड़ों यौन कर्मियों से बात कर ये किताब लिखी जिसकी उस समय बहुत चर्चा हुई।
ये एक प्रकार का रिपोर्टाज है या भेंट वार्ता इंटरव्यू शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसमें जिस साहस का परिचय उन्होंने दिया, आज के भद्र समाज में किसी का कोठे पर जाना, उनके इंटरव्यू लेना और उनसे बहुत खुलकर बात करना उनके पूरे जीवन व्रत पर, लोकशील की दृष्टि से बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन ये खतरा उन्होंने लिया और एक एक का इतिहास निरूपित करते हुए उसका पूरा समाज शास्त्र प्रस्तुत कर दिया।
वो अपनी कृति बोल कर लिखवाते थे, गांव तकिया दीवार से टिकाते और पीठ गांव तकिए से, फिर धारा प्रवाह बोलते जाते समा बांधने वाले किसी किस्सा गो के अंदाज में। एक बार बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा था,
मैं तो भाई जनता जो यहाँ बोलती है उस बोली का लेखक हूँ, न हिंदी जानता हूँ न उर्दू। सच बात, मैं तो पढ़ते पढ़ते कुछ थोड़ी सी भाषा जरूर सीख गया किसी हद तक, लेकिन अधिक नहीं। मैं यही कह सकता हूँ अपने बारे में जानने का मेरा प्रोसेस अभी जारी है, कह नहीं सकता कहाँ पूरा होगा या कोई और पूरा करेगा। फिर भी अभी प्यासा हूँ, बहुत पानी पिया इस दुनिया के अनुभवों के सागर से, लेकिन अभी प्यासा हूँ, अभी ऐसा लगता नहीं। हर बार जब अभी पिछला उपन्यास जब ये नाचो बहुत गोपाल पूरा किया तो यही सोचता था कि बड़ी मेहनत पड़ती है, अब ना कर पाऊँगा इतनी। अभी 1-1.5 महीना से खाली हूँ तो अब छुट्टी बिताने के बाद फिर उतावला हो रहा है मन।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।